अपना एक घर हो, ये सभी का सपना होता है, लेकिन बहुतों के लिए ये सपना सपना ही बनकर रह जाता है। फेडरल सरकार ने माना है कि बहुत से ऑस्ट्रेलियन अपना घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन कहते हैं कि अधिक घर बनाने से शायद घर खरीदने के दामों में गिरावट आए, और श्री मॉरिसन का कहना है कि इसमें जो जटिल प्लानिंग है वही कीमतों के बढ़ने का कारण है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए वो चाहते हैं कि और अधिक भूमि को घर बनाने के लिए रिलीज किया जाए। अब रिक स्मिथ मेलबर्न के बाहरी सबब में पिछले 10 सालों से किराए पर रह रहे हैं, और 2010 से वो एक घर खरीदने की सोच रहे हैं। उसकी पत्नी घर को संभालती हैं और परिवार में वो अकेले ही कमाने वाले हैं।
I'm actually working full time plus a couple of casual jobs on weekends and stuff like that. So yeah, not really able to save much.
श्री रिक कहते हैं कि वो एक अरसे से घर के लिए डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रहा।
Very frustrating actually, because yeah, it'd be nice to be able to say that we own a property, you know, so we don't have to. At least consider the idea of moving every couple of years or something like that, and depending on, you know, landlords or real estate agents and stuff like that, always certain of, you know, what's happening.
और ये हाल रिक का ही नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। सिडनी में अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एक संबोधन के दौरान ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि बहुत से ऑस्ट्रेलियन अपना एक घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
The market is getting away from people. The housing market is getting away from people, particularly in the eastern states. No matter how hard they work or save, or even when they're earning more, they are finding it harder and harder to keep up with the market and get into that market. To develop a sensible policy, it is important to separate out the forces that have been causing house prices to rise in the way they are.
उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में अपना घर बनाने वालों की संख्या में गिरावट आई है। ये 71% से घटकर 67% हो गई है, और ये कमी अधिकतर युवा लोगों के बीच में आई है। वो बताते हैं कि 2002 से 2014 के बीच जो 25 से 34 वर्ष की आयु के लोग थे, उन लोगों के पास अपना घर हो, इन आंकड़ों में 39% से गिरावट 29% पर आई है। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि राज्यों की राजधानियों में घरों की कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ी हैं, अपेक्षाकृत देश के अन्य भागों की जगहों पे। सिडनी में घरों की कीमतें सबसे अधिक बढ़ी हैं, और उसके बाद मेलबर्न में भी कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि सिडनी और मेलबर्न में घरों की कीमतों में 65% और 40% का उछाल आया है, और ये 2012 के बाद से हुआ है। श्री मॉरिसन कहते हैं कि लोगों के पास अपना घर हो, वो अपना घर बना पाएं, ये एक जटिल विषय है, और टर्नबुल सरकार इस दिशा में बहुत समय लगाकर सुचारू रूप से ही पॉलिसीज बनाना चाहती है। श्री मॉरिसन ने स्टेट्स और टेरिटरीज से कहा कि वो घरों को लोगों के खरीदने के योग्य बनाएं, यानी लोग घरों को खरीदने के समर्थ हो पाएं।
Supply side constraints include complex land planning and development regulation, insufficient land release, the planning cost and availability of infrastructure provision, transaction and betterment taxes, public attitudes towards urban infill, and for Sydney in particular, physical geographical constraints. Most of these factors either increase development costs directly or increase the time between developers purchasing a site and being able to sell completed dwellings, which when financed by debt is itself a cost that has to be capitalised in the price of new dwellings. Now, while state governments cannot do much about the physical geography occupied by our cities, they can do a great deal to improve planning processes and the provision of infrastructure, and many are. This is not about outing anyone on or putting anyone on notice when it comes to dealing with these issues, as some have suggested. It's a call for us all to work together.
Shri Morrison ka manna hai ki agar अधिक संख्या में घर बनाए जाएं तो कीमतों में गिरावट आएगी और अधिक से अधिक ऑस्ट्रेलियन अपना घर बना सकेंगे, अपना घर पा सकेंगे। लेकिन लेबर नेता बिल शॉर्टन का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है।
Back in about 1990, for instance, in Sydney, it would take about five times your average income to be able to afford a house for the price of the house. Now that's stretched to 15 times your income. Once upon a time, 25 years ago, a deposit took about 3 years to get together. Now it's taking about 10 years. The level of home ownership in this country for middle class and working class Australians has fallen to an unacceptable low. Now Labor's saying that it will applaud the government, Mr. Turnbull and his team, if they're going to actually do something to make a difference, but it's a cruel hoax to Australians when they say they want to do something about it, the federal government, and all they're doing is lecturing the states to do something about it.
Greens ke neta Richard Di Natale bhi isi ka samarthan karte hain.
The government seems absolutely blind to the problems that first home buyers face. The Treasurer today is talking about the problems you have with supply, when supply is only one small part of the problem. The big problem within the housing market is our tax policies favour investors over first home buyers. That's the critical problem that we have within our housing market. And unless this government gets serious about it and recognises that it has to tackle negative gearing and those policies that make it easier for people to buy their third and fourth home rather than their first, then we'll continue to see houses out of reach of ordinary Australians.